Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो ये मंत्र आपकी रक्षा करता है, इसलिए मंत्र बोलते हैं। मंत्र का मतलब यही होता है, मंत्र माने मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसका मनन करने से आपकी रक्षा होती है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मंत्र। आप जितना जप करते जाओ वो मंत्र आपकी रक्षा करता है, इसलिए अवति इति ओम, जो रक्षा करता है इसलिए ओम है। और इसका जो चतुर्थ अर्थ है ना, बड़ा मजेदार अर्थ है, मैंने इसका संकेत किया था। ओम शब्द का अर्थ स्वीकार है, स्वीकार। आप जब संन्यास लेते हैं तो आपको मंत्र बता दिया जाता है, भैया ओम। ऐसे एक बार बनारस में एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा है, शिव चैतन्य भारती जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के सन्यासी। जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो बड़ा स्नेह करते थे, लोग डरते थे उनसे, हम भी डरते थे, बहुत डरते थे। लेकिन जब पहली बार गया तो मैं पढ़ने के लिए गया उनके पास। उन्होंने पूछा क्या पढ़ना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं अद्वैत सिद्धि पढ़ना चाहता हूं, कुछ नव्य न्याय पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने एक शिष्य के पास भेजा, बोले उनके पास पढ़ो। तो मैंने कहा मैं उनके पास नहीं पढ़ूंगा, आपके पास पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आए हो गुरु बनने के लिए कि चेला बनने के लिए? तो मैंने कहा चेला बनने के लिए। तो बोले चेला बनने के लिए आए हो लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, बोले। मैं तुमको बोल रहा हूं कि मेरे चेले के पास पढ़ो और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम ही पढ़ाओ, मतलब तुम चेले बनने के लिए नहीं आए हो, मेरे आदेश का पालन करो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन करता हूं। मेरी मुसीबत ये थी कि मैं स्वामी दिव्यानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने कैलाश आश्रम में उनके पास पढ़ के गया था मैं, और कई ग्रंथ, कई ग्रंथ उनके पास पढ़ के गया था। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये मुझे पढ़ा पाएंगे कि नहीं, और बात वैसी थी, वो बहुत प्रसन्न थे। तो उनके सामने मैंने यही बात रखी थी, मैंने कहा कि महाराज मैं ओंकार का जप करता हूं, ओम ओम ओम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस समय मैं सफेद कपड़े में था, तो इसका मैं मंत्र जप करूं कि नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं और ये तो सन्यासी करता है एकाक्षर। जैसे उन्होंने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि नहीं खूब जप करो, और बोले कि ये मंत्र तुमको सन्यास में ले जाएगा, बोले ये मंत्र तुमको सन्यास में ही ले जाएगा। बोले क्यों नहीं जपना चाहिए? त्याग और वैराग्य ये मंत्र आपके भीतर से प्रकट करे, और किसको नहीं चाहिए त्याग वैराग्य? त्याग वैराग्य तो सबको चाहिए ना। आप संसार के लोग हैं तो आप में वैराग्य चाहिए कि नहीं? आप इतने परेशान, आप इतने टेंशन में, आप इतने डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि वैराग्य नहीं है, आप संसार में हैं। और संसार में रहते हुए थोड़ा वैराग्य हो जाए तो अरे मजेदार, वैराग्य में जो सुख है परिस्थितियां भी आ जाए और आपका मन उसमें डूबे नहीं, उबे नहीं, आप उससे परेशान ना हो, इसी का तो नाम वैराग्य है। और क्या है वैराग्य का अर्थ? भागना नहीं है, वैराग्य का अर्थ सजगता है, वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, वैराग्य का अर्थ वहां होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होने का भाव है। आप संसार में और कोई विपरीत परिस्थिति आ गई और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हुए उस परिस्थिति को आप देख रहे हैं, समझना है कि आप में वैराग्य है। वैराग्य किसको नहीं चाहिए? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं जैसे आसक्ति की जरूरत है आपके जीवन में, वैसे ही वैराग्य की भी जरूरत है। जैसे पकड़ने की जरूरत है ना, वैसे छोड़ने की भी जरूरत है। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या पकड़ते रहते हो क्या? यदि आप पकड़े और न छोड़े तो मुसीबत बन जाए। आप छोड़ते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, ये दोनों चलता जाता है। इसलिए जैसे पकड़ना जरूरी है। वैसे आप भोजन करते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं ना। अब बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जहां छोड़ना नहीं है? इसलिए आवश्यक है वैराग्य। उन्होंने कहा कि आप मंत्र जप करो, ये आपको ले जाएगा, संन्यास में ले जाएगा। और इस ओम का अर्थ यही, सन्यासी के लिए जो बोला कि आप इसका जप करो, मतलब ओम माने स्वीकार। आपके जीवन में जो भी चीज है ना, उसका क्या करो, स्वीकार करो। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? स्वीकृति का दुख है कि अस्वीकृति का दुख है? भगवान ने गीता जी में कहा, अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अस्वीकृति का दुख है। आप बहू से परेशान हैं, आखिर परेशानी के केंद्र तो यही है ना। आपको यदि उदाहरण समझना है तो यही तो है। आप सास से परेशान हैं, आप बेटे से परेशान हैं, आप अपने से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो चीजें हैं उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बस। और जिस दिन आप स्वीकार करना शुरू कर देंगे, और उसी दिन सारा दुख आपका समाप्त। आप एक सूत्र जीवन में धारण कीजिए आज, एक सूत्र, और वो कौन सा सूत्र है? ओम। आपके सामने जो भी है, बहु है, कैसी भी है, लेकिन क्या है? ओम। थोड़ा लेट हो गया है। अब इतना अस्वीकार हो चुका है, आदमी के जीवन में परिस्थितियां इतनी अस्वीकार हो चुकी होती हैं, अब उसको स्वीकार करना। एक बार माई आई, बोली बहुत अच्छी बात सुनाई, बोले प्रवचन में, और घर में जाके मैंने बहू के साथ ओम बोला, और उसने बोला कि कुछ गाली दे रही हुई क्या? आपकी परिस्थितियां लंबी हैं, बहुत लंबे समय से आप अस्वीकृति में जी रहे हैं, बहुत से मतभेद हो गए हैं, लेकिन आप थोड़ा उस लंबे समय की विकृति को संस्कृति में बदलना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय आपको फिर ओम को कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये जप के लिए नहीं, ध्यान देना, यहां ओम के अर्थ दो हैं, यहां जप भी है और यहां ओम उपदेश भी है। ये जो ओम एकाक्षर जो मंत्र है ना, ये उपदेशात्मक भी है और ये मंत्रात्मक भी है। आप इसका जप भी करें और इसका जो अर्थ है ना, उसका उपदेश भी ग्रहण करें। आपके सामने जो भी परिस्थितियां आए ना, आप थोड़ा सा कल से ही, आज से इसका प्रयोग करके देखना। जो भी परिस्थिति आ जाए, आप उसको स्वीकार करें। अच्छा, ऐसा है, ठीक, कैसा भी बेटा है तो मैं स्वीकार है, बहू कैसी भी है स्वीकार, सर्वांगी ना, सर्वांगीण रूप से स्वीकार है। और आप अर्धम अर्धम करेंगे तो नहीं। अच्छा, स्वीकार का मतलब क्या होता है भाई? सामने वाला आपके मन के अनुकूल है, उसको तो आप स्वीकार करते हो, उसको क्या स्वीकार करते? आपके मन के अनुकूल है, उसको क्या स्वीकार कहेंगे? स्वीकार का अर्थ तो वो है जो आपके मन के अनुकूल नहीं है और उसके बाद भी, तो उसमें आपकी महत्ता है। आपके अनुकूल चीज है, उसके स्वीकृति में आपका महत्व नहीं है, आप में उसका आपका महात्म्य नहीं है, आपका भी महात्म्य नहीं और ना उसके स्वीकृति का महात्म्य। महात्म्य उसका तब जब आपके वो अनुकूल नहीं है और उसके बाद भी आप स्वीकार कर रहे। आप श्रेष्ठ महापुरुषों के उदाहरण को देखना, परम पूज्य महाराज श्री भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे और हजारों की संख्या में लोग हैं और मंच पर महाराज श्री हैं और उसके अध्यक्ष हैं, और उसी समय महाराज श्री को किसी ने बोला आपने ये गलत किया, आक्षेप लगा दिया, और दूसरा कोई होता तो बोलता इसको बाहर करो, मंच से नीचे उतार दो। लेकिन क्या श्रेष्ठ सन्यासी, क्या स्वीकृति, उसी समय महाराज जी मंच पर खड़े होकर कान पकड़ के दंड बैठक किए, मैंने कान पकड़े, बोले गलती हो गई, क्षमा करो, प्रसन्न मुद्रा। आप समझ रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी स्वीकृति है, अपमान की भी स्वीकृति। सम्मान तो सभी स्वीकार करते हैं, सम्मान तो अस्वीकार होते हुए भी सम्मान स्वीकृत है क्योंकि आपके लिए है, उसमें बड़ी बात नहीं है। आपके होने की श्रेष्ठता, आपके समझदार होने की बात उसमें है। जहां अपमान भी आ जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार कर। एक महात्मा थे, ये विदेश की बात है, विदेशों में भी भारतीय साधुओं की तरह दुर्लभ महात्मा हुए हैं। उसका नाम सेंट फ्रांसिस था और वो भिक्षा मांग के खाते थे। किसी बड़े शहर के मेयर के पुत्र थे, वैराग्य हो गए और वो क्या करते थे, 8 दिन में एक बार भिक्षा मांग के खाते थे। 8 दिन में एक बार जाते, और विदेशों में जब आप भिक्षा मांगोगे तो आपको भिक्षा में क्या मिलेगी, अरे वही डबल रोटी, केक, ठोस कुछ कुछ मिलेगा ही, वहां रोटी दाल चावल कहां से मिलने वाली। उनका एक दोस्त था, वो बराबरी का था, तो फ्रांसिस उनके घर में भिक्षा करने के जाते थे। वो कुछ बोलते होंगे जा करके, और वो अंदर से आता और 10-20 इनको गाली देता, और वो कहता भैया तुम मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए मत आओ, भिखारी भिखारी तुम बन के क्यों आते हो, लोग मुझे बदनाम करते हैं, लोग पूछते हैं तुम्हारा दोस्त है क्या, ये तो भिखारी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और गाली देता, कुछ देता नहीं, वो केवल गाली देता हो। वापस लौट आते हो, महीनों गुजरे लेकिन वो आना छूट नहीं रहे थे। एक दिन उसने कस को पकड़ा, कस करके पकड़ा और पूछा, ये बताओ कि मैं इतना तुमको मना करता हूं उसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आते हो, और मेरे से तुमको मिलता क्या है, मैं भिक्षा भी नहीं देता हूं। सेंट फ्रांसिस ने बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा, दोस्त जो चीजें मुझे तुमसे मिलती हैं दुनिया में किसी से भी नहीं। बोले मैं क्या देता, अरे बोले तुम गाली देते हो ना, जब तुम गाली देते हो तो उस समय मैं देखता हूं कि इन गालियों का मेरे मन पर क्या असर पड़ता है, और मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। उस समय जब पहले तो मेरा मन बड़ा पीड़ित हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक थप्पड़ जमाऊं क्या, मैं भी गाली दूं क्या, लेकिन आज मेरी ऐसी स्थिति है कि तुम कितना भी गाली दो लेकिन मेरा मन उससे कोई प्रभावित नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये स्वीकृति है, ये स्वीकृति है। आपका सम्मान होगा, आपका अपमान होगा, आपके आसपास के लोग क्या आपके जैसे होंगे क्या, आप तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हो कि नहीं, और ये भी सबसे बड़ी जड़ है समस्या की। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, और आप अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे तो आप दूसरे को स्वीकार कैसे करोगे। आप अपने को बिल्कुल निरापद, निर्दोष, बिल्कुल अच्छी प्रकार के समझेंगे, आप दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक दिन बोला था ना कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, आपको वोटिंग करना हो तो आप किसको करेंगे, और आप भी उसमें हैं प्रतिनिधि, आप अपने आप को ही करेंगे। इसलिए ध्यान देना, यह ओम का अर्थ यही है कि आपके सामने जो भी चीजें हैं ना उसको आप स्वीकार करो बस, और आप स्वीकार करना शुरू कर देना, लेकिन उसमें अस्वीकृति की मानसिकता को घुसने मत दीजिए। निरंतर निरंतर स्वीकार, जो भी है स्वीकार करते, और उस स्वीकार करते 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 मन आपका सन्यास की उच्च भावना में प्रवेश कर जाता, और इसी का नाम ओम है, ओम है, और इसीलिए सन्यासी का मंत्र बन गया। ये जो मंत्र बना सन्यासी का, इसीलिए सन्यासी माने स्वीकार है, सब स्वीकार है, उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, जो भी चीजें हैं सब अपनी, और जो भी चीजें कोई किसी का नहीं है और सब मेरे हैं। ये उच्च कोटि की भावना को निर्मित करने के लिए ही ये आपके जीवन में सर्वोच्च ओम, सर्वोच्च मंत्र जो है ओम है, और इसका अर्थ यही है, ओम माने स्वीकार, और स्वीकृति से ही व्यक्ति साधु बनता है। स्वीकृति के बिना, सर्व स्वीकृति के बिना व्यक्ति कभी साधु नहीं बनता है। यहां स्वीकृति शब्द का अर्थ केवल आंशिक स्वीकृति नहीं है, स्वीकार तो हम भी करते हैं, स्वीकृति माने पूर्णतया स्वीकार करना, पूर्णतया स्वीकार करना। एक व्यक्ति परम पूज्य महाराज श्री के पास आया और उन्हें कहा कि महाराज मुझे आधा ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो महाराज जी ने कहा भैया आधा ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ? तो महाराज जी ने उन्होंने बोला कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब अपना मालूम पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं? और मुझे भी मालूम पड़ने लगा, दूसरे का भी अपना मालूम पड़ने लगा है। मेरा तो मेरा है, दूसरे का भी समझ गए। आप इसको पूरे रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक मैं दृष्टांत सुना देता हूं। मैं ऐसे दृष्टांत मुझे बहुत कम आते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मैं अक्सर सुनाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम उपदेशों को कैसे अर्थ स्वीकृति में लेते हैं। एक कोई व्यक्ति था और उसने एक बहुत सुंदर बगीचा बना रखा था, बहुत सुंदर बगीचा था। बगीचे के प्रति उसका बड़ा लगाव था, मोह था, आसक्ति थी। उस बगीचा में एक गाय आ गई और बगीचा खाने लगी, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने एक डंडा मारा और वो गाय मर गई। गोहत्या का पाप लगा और गोहत्या उसके पास पहुंच गई और गोहत्या ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि तुमने गाय को मारा है। ब्राह्मण बड़ा पढ़ा लिखा था वो, उसने कहा मैंने कब मारा है? अरे मैंने तो कभी नहीं मारा। हां 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 बोले, हां बात तो ठीक है, मैंने नहीं मारा, वो इंद्र ने मारा है, इंद्र ने मारा। उन्होंने कहा कि इस हाथ का देवता कौन है और मारा किसने? हाथ ने। और हाथ का देवता कौन है? इंद्र। तो मैंने मारा कि इंद्र ने मारा? बोले जाओ तुम उसके पास। वो इंद्र के पास पहुंची। दृष्टांत बड़ा मधुर है ये, हम ही लोगों का वर्णन है इसमें। इंद्र के पास वो गोहत्या पहुंची और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुमने गाय को मारा है। इंद्र ने कहा मैंने और गाय को? उन्होंने समझा दिया, बोले हाथ की देवता आप हैं? बोले हां। और उस ब्राह्मण के हाथ ने गाय को मारा? बोले हां। तब बोले तुम अधिकारी हो गए कि नहीं? इसके अपराधी तुम हुए कि नहीं? इंद्र तो घबरा गए, ऐसे तो कितनी गोहत्या मेरे पास पहुंच जाए, कितने पाप मेरे तक पहुंच जाए, भागी भागी उस देवता के पास पहुंचे, उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण तो सचमुच बड़ी सुंदर बगीचा बना रखा था, रूप बदल करके इंद्र वहां पहुंचे और पहुंच करके नारायण वहां स्तुति करने लगे, ब्राह्मण की स्तुति करने लगे। वाह वाह क्या सुंदर बगीचा है, इतना सुंदर बगीचा बनाया किसने? बड़ा अभिमान में, बड़ा प्रसन्नता में आया वो ब्राह्मण और उसने छाती ठोक के कहा मैंने बनाया है। वो गौहत्या थी ना बगल में, इंद्र ने कहा बैठो इसके सिर पर। जब गाय को मारा तो आपने क्या बोला? इंद्र ने। और जब बगीचा बनाया ये किसने बनाया, तब बात किस पर आई? आप पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। आपको उस समय भी बोलना चाहिए था भैया ये बगीचा इंद्र ने बनाया, कहना चाहिए था कि नहीं? जब गौ हत्या की बात आई तो कहा कि इंद्र ने, और जब बगीचा की बात आई तो ऐसे तो हम जीते हैं। ये वो ब्राह्मण, ये तो हम लोगों के जीवन का प्रतीक है। हम लोग भी संसार में ऐसे ही जीते हैं, आग्रह में, दुराग्रह में, अर्ध सत्य में, स्वीकृति में, अस्वीकृति में, और इस स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच में हम झूलते हैं। आज यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंतर्द्वंद और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख है। और संन्यास का अर्थ होता है सर्व स्वीकृति, और ओम का भी अर्थ होता है सर्व स्वीकृति। ओम माने स्वीकार। इसलिए आज आप इस ओम के अर्थ को समझना, उपदेशात्मक और मंत्रात्मक। आप ध्यान करेंगे तो ओम का, और इसका उपदेशात्मक जो भाव है ना, स्वीकारार्थ, आप स्वीकार करो। ये एक मंत्र भी आपके जीवन में यदि सही रूप में प्रवेश करे, एक ही मंत्र आपके जीवन में उतर जाए, तो आपको अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं। आप ध्यान देना, मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए राजमार्ग की आवश्यकता नहीं है, चलने वाले व्यक्ति के लिए एक पगडंडी की भी, समझ में आया कि नहीं, एक पगडंडी भी पर्याप्त है। चलने वाले के लिए पगडंडी भी पर्याप्त है, और नहीं चलने वाले के लिए राजमार्ग भी छोटा है। आप बहुत बड़े मार्ग पर है, बहुत बड़े मार्ग पर खड़े हैं, लेकिन आप चलना नहीं चाहते, तो आप कहीं पहुंचेंगे? आपको मार्ग कहीं पहुंचाता है कि आपको चलना पहुंचाता है? आप बोलते तो जरूर है कि रास्ता आपको वहां तक पहुंचा देगा, ये रास्ता आपको वहां तक पहुंचा देगा, ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन रास्ता कभी किसी को पहुंचाता है क्या? रास्ता कभी किसी को नहीं पहुंचाता है, क्योंकि रास्ता तो चलता है नहीं, रास्ता तो जहां पर है वहीं रहता है, इसलिए रास्ता आपको नहीं पहुंचाता है, अपितु उस रास्ते पर जो आप चलते हैं ना, वो चलना आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। इसलिए कितना भी बड़ा मार्ग आपके पास है, लेकिन आप मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो आपको वो मार्ग कहीं पहुंचाएगा नहीं। आपके पास बहुत बड़ा मंत्र है, लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मंत्र है, और आपको बहुत बड़े गुरु ने दिया है, अब वो मंत्र आपको कहीं पहुंचाएगा? आप उस मंत्र को जपते नहीं, आप उसके मंत्रार्थ को जीवन में उतारते नहीं, तो वो मंत्र आपको कहीं पहुंचाएगा क्या? लोग बोलते हैं हमने अमुक आदमी से मंत्र लिया है, बहुत बड़ी बात है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान कहते नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अध्यात्म का प्रारंभ कभी विनष्ट नहीं होता है, आप अध्यात्म में जितना चल चुके होते उतना आप चल चुके होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन आपका प्रोग्रेस रुकेगा, आप चल नहीं रहे, आप रुके हुए हैं। आपको मंत्र मिला है, आपका बीज अक्षय है, आपका मंत्र अक्षय, वो मिटेगा नहीं। जैसे मान लो कि कोई बीज आपने जमीन में डाला है, लेकिन पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, सूखी जमीन पड़ी है, अब वो बीज आपके अंदर पड़ा होगा, जमीन के अंदर पड़ा होगा, लेकिन उगेगा नहीं, और उस उगना आप उसको उगाना चाहते तो आपको पानी डालना पड़ेगा, आपको खाद डालना पड़ेगा, तब वो उगेगा। या आपका पुरुषार्थ है, आपको आपको मंत्र मिला गुरु से, साधना मिली गुरु से, आपको उसको जपना है, उस मंत्रार्थ पर आपको चलना है, आपकी साधना जीवन शैली बनाना है, और उसके बाद वो मंत्र मंत्र की साधना आपको पहुंचा देगी। और आप केवल मंत्र लेकर के बैठे हैं तो मंत्र आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, जहां की भाई आपको अगले जीवन में साधना करना पड़ेगा, आपको अगले जन्म की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। एक बार परम पूज्य आनंद में मां को किसी ने प्रश्न पूछा, आपका संग है हमको और हमको अब साधना करने की क्या जरूरत है, आपके साथ हम हैं बहुत बड़ी बात है। मां ने कहा इतना संग तो मच्छर के भी साथ है, मक्खियों के भी साथ है, इस शरीर के आसपास तो मक्खियां भी तो रहती हैं, मच्छर भी तो रहते हैं, तो क्या उसको संग बोलते हैं? केवल संग का अर्थ उतना ही नहीं है, संग का अर्थ होता है सत्संग। आप संग से अपने जीवन को सत की ओर ले जा रहे हैं, सत्संग का अर्थ यही है, आप संग से आप सत की ओर आप जा रहे हैं, आपके जीवन में सत की प्रवृत्तियां निर्मित हो रही हैं, आपका जीवन सत प्रधान बनता जा रहा है, उसका अर्थ सत्संग है। आप कितने भी बड़े महापुरुष के पास आप बैठे रहो, आप प्रेरणा न लो, आप उस महापुरुष को अपने जीवन की शैली न बनाओ। रामकृष्ण परमहंस के पास तो रसिया भी तो था, लेकिन वो सारी दुनिया रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा में रहती थी, उनके ध्यान में, आराधना में, सत्संग में, और बाहर बैठ के रसिया को गाली देता था। तो तात्पर्य आपका मार्ग आपका आपको कहीं नहीं पहुंचाता है, आप ही तो मार्ग पर जब आप चलते हैं तो चलना आपको वहां पहुंचाता है। इसलिए अवति रक्षति इति ओम, आपको ओम आपकी रक्षा करेगा, आपको चलाएगा, लेकिन उसका जो अर्थ है स्वीकार, उसका अर्थ जो परमात्मा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद वो तत्व तक आपको पहुंचा देगा। इसलिए सर्वप्रथम यह कठोपनिषद के प्रारंभ में इस ओम पर भगवान के आद्यतम अनादितम अक्षर का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण किया है। अभी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं, आप सीधे बैठ जाएंगे, एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जपेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। आज अपने मन को ओंकारेश्वर, महाकाल, केदारेश्वर, काशी, वाराणसी, आप जहां भी अपने मन को ले जाना है, जो प्रियतम आपका ज्योतिर्लिंग वहां आप अपने मन को ले चलना और उसी मंदिर में भगवान के बगल में बैठकर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना।
हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।